श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। दिव्य का मतलब इस लोक के नहीं है। और भगवान कह रहे हैं इन्हें जानना बहुत मुश्किल है, परंतु जो इसे जान जाता है वे दोबारा जन्म नहीं लेता। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वे इसी से संबंधित है, भगवान के जन्म कर्म के बारे में जानना। तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद चल रहा है, तो परीक्षित महाराज को कितने दिनों में मृत्यु आनी थी? 7 दिनों में। तो छठा स्कंद का मतलब लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। तो 3 दिन बीत चुके थे यहां पर, और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला और परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर जब साधुओं के बीच में पहुंचे, तो वह बहुत वहां पर उन्होंने बहुत ध्यान से साधुओं को चुना कि कौन ऐसा साधु है जो मुझे परम गति दे सकता है, जो मुझे भगवान की शरण दे सकता है। और फिर उन्होंने फाइनली सुखदेव गोस्वामी को शरणागत किया। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, बहुत हैरानगी की बात है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है और वो आया है यहां पर, और मान लीजिए कोई व्यक्ति मरने वाला है और यहां पर आया है कक्षा में, और वो कहे कि मुझे कुछ दिव्य ज्ञान दीजिए, और जिसकी 3 दिन बाद मृत्यु आनी हो, और सुखदेव गोस्वामी उसे क्या बता रहे हैं? डायनेस्टीज के बारे में समझा रहे हैं कि किसका पुत्र कौन था, उसका पुत्र वो था, उसका वो पुत्र हुआ, वो इससे पैदा हुआ, वो इससे पैदा हुआ। और चलिए एक तरीके से देखा जाए देवताओं के बारे में चर्चा करना फिर भी शुभ माना जाता है, थोड़ा पायस है। पर जैसे ये जो आज हमने श्लोक लिया है, इससे 7 श्लोक पहले देवी देवताओं का जो वंशज है वो बताया गया है। इसके अगले 10 श्लोकों तक अदिति के पुत्र, क्षमा कीजिए, दिति के पुत्र जो असुर हैं उनके बारे में सारा वर्णन किया गया है यहां पर। तो ये बहुत हैरानगी होती है कभी कभी हमें सुनकर कि कोई व्यक्ति मरने वाला है और हम उसे बता रहे हैं कि किस असुर से कौन सा असुर पैदा हुआ। लगता है ना थोड़ा सा, मतलब क्यों, क्या जरूरत क्या है इसकी? आपको क्या लगता है, जरूरत है इसकी? नहीं है, नहीं है जरूरत भाई, जरूरत नहीं है इसकी। तो फिर क्यों बोला गया है आखिर ये? क्योंकि देखिए अगर हम समझेंगे नहीं इसे, तो हमें लगेगा कि भागवतम का कुछ अंश महत्वपूर्ण है और कुछ अंश जिसे हम छोड़ सकते हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम को कहा गया है अमल पुराण। अमल पुराण मतलब इसमें कोई मल नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो आप सोचेंगे भाई प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और आप असुरों के बारे में बता रहे हैं, ये कौन सा प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस है? तो हम इसी पर चर्चा करेंगे किस प्रकार ये प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हालांकि कुछ अज्ञानी व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कम बुद्धि होती है, तो वो सोचते हैं कि कथा का मतलब, अगर हम कथा कर रहे हैं तो कथा का मतलब केवल भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करना, या ये चर्चा करना कि भगवान ने रास नृत्य कैसे किया था, जो 10वें स्कंद के जो 5 मुख्य अध्याय हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौनेताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो कुछ लोग ये सोचते हैं, कम बुद्धि वाले लोग, कि ये सब चीजें तो हमें, तो मतलब अगर कथा का मतलब, भागवत कथा का मतलब भगवान के रास नृत्य के बारे में चर्चा हो, कोई कथा हो, कुछ तो हो उसके अंदर, पर ये जो डिस्क्रिप्शन है दरअसल ये कथा नहीं है। परंतु रूप गोस्वामी, देखिए रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी के सभी ग्रंथों में से एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उज्ज्वल नीलमणि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी ने जो भाव के लक्षण होते हैं उनके बारे में बताया गया है, किस प्रकार व्यक्ति के अंदर व्यभिचार, ये जो जितने भी भाव हैं वो सारे भाव प्रकट होते हैं। परंतु उस ग्रंथ में उज्ज्वल नीलमणि श्रीमद् भागवतम को संबोधित करते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता मतलब ये केवल परमहंसों के द्वारा सुनी जाने वाली संहिता है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम इसके डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं, जो भी हम इसमें सुन रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, कोई आम बात नहीं है, ये विशेष है और मेरे जीवन में इसका एक रोल है। तो देखिए जब तक हम श्रीमद् भागवतम के बारे में जानेंगे नहीं कि श्रीमद् भागवतम की क्या ग्लोरीज हैं, क्या गुणगान है श्रीमद् भागवतम का, तब तक हमारे लिए भागवतम, तब तक हमारे अंदर डाउट्स आते रहेंगे, हमेशा संशय आएंगे कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, क्या यह सही है? जिस प्रकार भगवान बता रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, कि जिस व्यक्ति में संशय होता है, डाउट होता है, मतलब भगवान कह रहे हैं विनश्यति, उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो संशय आत्मा है वो किसी तरफ नहीं रह पाता, ना वो भक्ति पूरी कर पाता है और ना वो पूरी तरीके से भौतिक जीवन में जा पाता है, तो क्या है, उसका विनाश निश्चित है। तो श्रीमद् भागवतम की गुणगान में यहां पर भागवत महात्म्य से हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। यहां पर बताया गया है, ये सब इंग्लिश में है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में पढ़ूंगा। द आइडेंटिटीज ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड श्री भगवान आर ऑलवेज वन एंड द सेम, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एटर्नल नॉलेज एंड ब्लिस। तो बताया गया है यहां पर जो श्रीमद् भागवतम है और भगवान है, कृष्ण में और श्रीमद् भागवतम में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, अभिनत्व नाम नामिना, उस प्रकार श्रीमद् भागवतम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और बता रहे हैं यहां पर, नो द भागवतम टू बी अ टेक्स्ट फुल ऑफ रिवल्यूशंस ऑफ श्री कृष्ण स्वीटनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटी हु हैव अटैचमेंट टू हिम। तो यहां पर कह रहे हैं आपको जानना पड़ेगा जो भागवतम है ये कृष्ण की मधुरता से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है अभी चर्चा करेंगे हम लोग। इट्स वर्ड्स एम एट डिस्क्राइबिंग द फोर टॉपिक्स ऑफ नॉलेज, रियलाइजेशन, डिवोशन एंड द लिम्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस। इट वेरी एक्सपर्टली सबड्यूस इल्यूजन। नो दिस टू बी श्रीमद भागवतम। तो कह रहे हैं जानिए कि ये वही श्रीमद भागवतम है। बता रहे इट वेरी एक्सपर्टली सबड्यूस इल्यूजन, बहुत चतुराई से ये क्या करती है, हमारी अज्ञानता का नाश कर देती है। और क्या है, भागवतम में केवल चार चीजों की चर्चा की है, नॉलेज ज्ञान भगवान के बारे में, रियलाइजेशन अनुभव साक्षात्कार, डिवोशन भक्ति एंड लिम्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस जो भक्ति के अंग हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। हु नोज इट्स एक्सटेंट, इनडीड इट्स टेक्स्ट गोस ऑन विदाउट लिमिट। लॉर्ड हरि शोस अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट टू ब्रह्मा इन फोर वर्सेस। बता रहे हैं यहां पर कि ये जो भागवतम है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए जिस प्रकार अगर हम समुद्र के किनारे पे खड़े होकर समुद्र को देखें तो उसकी कोई लिमिट नजर आती है? नहीं, कुछ नजर नहीं आता। तो उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम है, और जितना ये बड़ा हमें नजर आ रहा है उतना ये डीप भी है, उतना ये गहरा है अंदर। और बता रहे हैं यहां पर कि ये जो भागवतम है ये ब्रह्मा जी को भगवान ने चार श्लोकों में दिया था। तो ये शुकदेव गोस्वामी कृपा से और आचार्य कृपा से हमें पूरी भागवतम मिली है। आप सोचिए अगर हमें भी इस तरह भगवान चार श्लोक देते तो हम क्या समझ पाते उसमें से। बता रहे हैं फॉर ह्यूमन बींग्स हुज इंटेलिजेंस एंड अदर फैकल्टीज आर लिमिटेड, व्यास हैज रिसाइटेड द फेमस कन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित एंड शुकदेव। कि जो मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, कम है, उनके लिए व्यास देव ने ये परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी के संवाद को लिखा है। और फाइनली यहां पर बताया, दिस इज अ बुक ऑफ 18,000 वर्सेस नोन एज द भागवतम। इट इज द अनलिमिटेड शेल्टर फॉर दोज हु आर इन द ग्रास्प ऑफ द शाकतली। बता रहे हैं यहां पर कि ये जो भागवतम है ये 18,000 श्लोक है इस भागवतम में, और ये उन लोगों के लिए है जो इस कलयुग में, ये कलयुग को बताया गया एक शाक के समान, कोई छोटी मोटी मछली नहीं बताया, शाक के समान बताया गया है। तो ये उस शाक के समान है, उस मछली के समान है जो किसी को भी निगल जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवतम हमें उस शाक से बचाने वाली है। तो अगर बचाने वाली है तो इसे सुनने का एक तरीका होगा। तो यहां पर बताया गया कि इसको सुनने के एक तरीके हैं कि जो सुनने वाला है श्रोता उसके क्या गुण होने चाहिए। तो बताया, नाउ आई विल डिस्क्राइब इट्स हियर डेडिकेटेड टू नरेशन ऑफ, यहां पर सुपीरियर्स और इंफीरियर चार प्रकार के श्रोता ऐसे बताए गए हैं जो होने चाहिए, और चार प्रकार के ऐसे लोग बताए गए हैं जो श्रोता नहीं होने चाहिए, जो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। बता रहे हैं द सुपीरियर हियरर्स आर स्पैरो, स्वैन, पैरट एंड फिश। चार प्रकार के जो मुख्य श्रोता हैं, जो सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं, वह हैं चिड़िया, स्वान को क्या बोलेंगे, हंस, तोता और मछली। और चार प्रकार के जो निम्न जाति के श्रोता हैं वह हैं वॉल्फ, भुरुंड बर्ड, बुल एंड कैमल। तो ये चार प्रकार के श्रोता हैं, ये इंफीरियर हैं। बताया गया है इसमें, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है, वन हु इग्नोर्स एवरीथिंग एल्स एंड इज ओनली इंटेंट ऑन लिसनिंग टू कृष्णा स्क्रिप्चर इज अ स्पैरो, लाइक द स्पैरो इंटेंट ऑन द वॉटर रिलीज फ्रॉम द क्लाउड। बताया गया जिस प्रकार चिड़िया, जैसे चतक बर्ड है, चतक पक्षी जो होता है, वो पक्षी क्या करता है, वह कभी भी किसी कुंड का पानी नहीं पीता, किसी नदी का पानी नहीं पीता, उसकी दृष्टि केवल बादलों की तरफ होती है। और जब चातक पक्षी जो होता है, चातक पक्षी की जब मित्र उसे देखते हैं, जो बाकी पक्षी, तो उसे बोलते हैं भाई हम सब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करो, हमारे साथ मिलकर पानी पी लो यहां सर। पर वो कहता है नहीं, क्योंकि उसे 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 पता है कि उसका लक्ष्य क्या है। जो ये जो पक्षी है, चातक पक्षी, ये किसी ये अपनी भक्ति में समझौता नहीं करता। जिस प्रकार कभी हम श्रवण करते हैं और श्रवण करके घर जाते हैं और घर में हम सिचुएशन देखते हैं, सरकमस्टांसेस देखते हैं, तो हमें लगता है जी बैलेंस बना के चलना चाहिए, सब कुछ ठीक नहीं है, घर गृहस्थी भी देखनी है वहां पर। परंतु ये चतक पक्षी वैसा पक्षी नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये सिर्फ जो पानी जो बादलों से जो पानी की बूंदें गिरती हैं, केवल उस उन बूंदों को पीता है। दूसरा यहां पर बताया गया है श्रोता, द स्वान, यहां पर हंस के बारे में बताया गया किस प्रकार हंस दूध और पानी अगर मिला हो तो उसमें से दूध पी लेता है, इतना एक्सपर्ट होता है वह। तो ये देखिए अच्छे श्रोता के बारे में बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि शास्त्र बता रहे हैं कि हमें ऐसा श्रोता बनना है कि हो सकता है हम आए मंदिर में और हो सकता है हम कुछ ऐसी चीजों को देखें जो ठीक नहीं है, हो सकता है हम कुछ ऐसी चीजें सुने जो ठीक नहीं है, परंतु हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक हंस की तरह जो दूध है जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, केवल उन चीजों को अपनाना है बस। तीसरा यहां पर बताया गया है By speaking little, only what is appropriate, the parrot pleases Vyasdev, the listeners, the instructor, and the audience. जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया एक तोता होता है, तोते का example है तीसरा, किस प्रकार तोता यहाँ पर actually एक पूरा ये description ऐसे हम चर्चा नहीं करेंगे, किस प्रकार एक तोते ने यहाँ पर व्यासदेव और बाकी श्रोता को और सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम को, क्योंकि वो सुख हैं, उन्होंने किस प्रकार जब भागवतम को चखा था तो ये भागवतम और मधुर हो गई थी। तो हमें भी उसी प्रकार का श्रोता बनना है। और यहां पर मछली के लिए बताया गया चौथा उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार जो मछली है, मछली जब भी जल में रहती है तो कुछ बोलती नहीं है। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूं, द ईगर हियर हु वाइल रेलिशिंग द नेक्टर डज नॉट स्पीक फॉर इवन अ मोमेंट इज लाइक अ फिश इन द ओशन ऑफ मिल्क। कि किस प्रकार मछली, जैसे कभी कभी हमें चर्चा करने की बहुत आदत होती है, क्या चल रहा है समाज में, देश में क्या चल रहा है आजकल, स्टॉक मार्केट कैसा है, क्रिकेट की क्या न्यूज है, चलो क्रिकेट देखते नहीं है कम से कम न्यूज तो देख लें, न्यूज नहीं देखते कम से कम स्कोर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंक्लिनेशन हमारा रहता है उसकी तरफ। पर कह रहे नहीं, अगर जो श्रोता है, जो प्रमुख श्रोता है, उन्हें इन चार कैटेगरीज में होना पड़ेगा। और इसी प्रकार आगे चार श्रोता बताए गए हैं जो 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 एक्चुअली श्रोता नहीं है, जो एक सेंस में बताया गया जो डिस्टर्ब करते हैं, जो वातावरण को, भक्ति के वातावरण को खराब करते हैं। तो हाँ, ये भागवत महत्व में इतना ही बताया गया है। तो बताया गया है कि कुछ भी जो चीज है जो भगवान से संबंधित, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान से संबंधित अगर कुछ भी है तो वो चरित्र क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें उन चीजों को नापना नहीं चाहिए। फिर जैसे अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे पहले कि कभी कभी हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी नापतोल की भावना रहती है, परंतु हमें वो नापतोल नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इससे रिलेटेड बता रहे हैं सज्जन तोषणी में, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद पुराण, जितने भी ग्रंथ क्यों नहीं है, उनको अगर समुद्र में फेंक दिया जाए, किस में फेंक दिया जाए, समुद्र में। समुद्र इसलिए बोला गया यहां पर कि समुद्र में अगर कुछ एक चीज, एक बार चीज चले गई तो उसको वापस लाना असंभव है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर उसे समुद्र में भी फेंक दिया जाए सब ग्रंथों को और एक भागवतम को बचा लिया जाए, तो इसका मतलब भक्तों के और साधारण जीव जो हैं, किसी के भी जीवन में कोई नुकसान नहीं आएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम का की ग्लोरिफिकेशन है, ये श्रीमद् भागवतम की महत्वता है। और परीक्षित महाराज भी देखिए, परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु आनी थी और परीक्षित महाराज कितनी ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे थे। बताया गया कि जब परीक्षित महाराज ने सुना कि उनकी मृत्यु 7 दिन में आ जाएगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई राज अभिषेक किया अपने पुत्र का, इमीजिएटली सब कुछ त्याग दिया, तुरंत त्याग दिया सब कुछ, उन्होंने तुरंत त्याग के निकल गए वो वहां पर। और 7 दिन तक ना उन्होंने पानी पिया, ना कुछ खाया और ना सोए वहां पर। तो इसलिए नहीं सोए क्योंकि जो भी वो चर्चा कर रहे थे वहां पर, वो किससे संबंधित थी? वो भगवान वामन से संबंधित थी, भगवान के अवतारों से संबंधित थी। तो भगवान से संबंधित कुछ भी क्यों ना हो, वे बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से किनके लिए जरूरी है? भगवान के भक्तों के लिए। जिस प्रकार एक लड़का होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो वो प्रेम तो उस लड़की से करता है, परंतु फिर भी क्या है, वे रुचि रखता है कि वह कौन से मॉल में जाती है, कौन सा रंग उसे पसंद है, उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कौन उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वे जाना चाहता है इसे। परंतु क्या उसका कोई संबंध है उससे? कोई संबंध नहीं है उससे, परंतु क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो उस लड़की से संबंधित है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं कि क्योंकि वे भगवान से संबंधित है, उनका रिलेशन भगवान से है, इसलिए वे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी डायनेस्टी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, इसे हम याद करें वहां पर, इसका मतलब ये नहीं है। पर हमें यह जानना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर सुनते हैं या बाहर हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें भ्रमित करने में हमेशा लगे रहेंगे। वो बताएंगे कि जो आप जो पढ़ रहे हैं ये श्रेष्ठ नहीं है वहां पर, ये जो भागवतम ग्रंथ है ये इतना श्रेष्ठ नहीं है। परंतु जिस प्रकार हमने शुरू में चर्चा की कि रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कौन सी संहिता ये? परमहंस संहिता है ये परमहंसों के लिए है ये। तो ये कोई आम चीज नहीं है, ये कोई आम ज्ञान नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा कि इनकी चर्चा हम दो कारण से करते हैं। पहला कारण यह है क्योंकि भगवान ने उस कुल में जन्म लिया, और दूसरा कारण यह है क्योंकि देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है यहां पर उरुक्रम वामन देव का, ये बिल्कुल मध्य में दिया गया है। इससे पहले देवी देवताओं के चर्चा की गई है, इसके बाद असुरों की चर्चा की गई है। ये मध्य में इसलिए रखा गया है और ये इसलिए बताया गया है कि किस प्रकार असुर, देवता और भगवान, इन तीनों में से भगवान का जन्म और भगवान का कर्म किस प्रकार श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए अगर हमें किसी चीज की सुपीरियरिटी बतानी है, किसी चीज का महत्व बढ़ाना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये चीजें उनसे छोटी हैं, तो उस चीज का क्या महत्व बढ़ता है। तो यहां पर बताया गया कि किस प्रकार ये सब चीजें हैं, ये जो देवी देवताओं के बर्थ हैं, इसमें कोई ग्लोरीज नहीं है इनकी, इनका गुणगान इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान ने उनके कुल में जन्म लिया है। जिस प्रकार एक भक्त अगर किसी वंश में जन्म ले तो पूरे वंश का क्या होता है, गुणगान होता है। तो आप सोचिए अगर भगवान स्वयं किसी वंश में जन्म लेंगे तो उस वंश का क्या होगा। तो इसी कारण से इसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में की गई है, और यहां पर बताया गया है कि whenever and wherever, जहां भी और जिस समय भी devotees of भगवान recite and listen to scripture श्रीमद् भागवतम, therefore certain Krishna is present, कि जिस भी स्थान पर और जिस भी समय, ऐसा नहीं कि सुबह शाम को दोपहर में, किसी भी स्थान पे और किसी भी समय क्यों नहीं, जिस समय भी भगवान की चर्चा होती है, स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान यहां पर प्रेजेंट हैं, निश्चित रूप से राधा राधिकारमन कृष्ण बलराम के रूप में प्रेजेंट हैं, परंतु भगवान स्वयं आते हैं। और आगे यहां पर बताया गया है, वेयर एवर अ सिंगल वर्ड्स और अ हाफ वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम इज हर्ड, बताया गया है जिस स्थान पर भी श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, उसके बाद कह रहे हैं एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक, जिस स्थान पर भी एक श्लोक या आधा श्लोक क्यों नहीं बोला जाता, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा शाइन्स फोर्थ अलोंग विद द गोपीज, उस स्थान पर कृष्ण उपस्थित होते हैं गोपियों के साथ। तो इसका मतलब अगर इस वक्त हम यहां पर वामन देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं, तो स्वयं भगवान यहां पर गोपियों के साथ उपस्थित हैं। दोस हु हैव टेकन अ ह्यूमन बर्थ इन द लैंड ऑफ भारत बट हैव नॉट हर्ड द भागवतम आर स्लेव्स ऑफ सिन एंड कमिट स्पिरिचुअल सुसाइड, कि जिन लोगों ने भी मनुष्य जन्म प्राप्त किया है भारत में और जो भागवतम को नहीं सुनते, इसका मतलब क्या है, वो पापी लोग हैं और दे आर कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड, वे आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं. द फादर्स एंड द फादर्स मदर्स वाइफ्स एंड होल फैमिली लाइन्स ऑफ दोस हु रेगुलरली सर्व द स्क्रिप्चर श्रीमद भागवतम आर ऑल इजली डिलीवर्ड फ्रॉम मेटेरियल एग्जिस्टेंस. बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भागवतम सुनता है तो उसके पिता, बताया गया फादर्स, फादर्स का मतलब क्या है, फोर फादर्स भी, पूर्वज भी, फादर्स मदर्स वाइफ एंड होल फैमिली, पूरी उसका परिवार, उसका क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, डिलीवर्ड फ्रॉम मेटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक संसार से उद्धार हो जाएगा. और बताया गया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ श्रीमद भागवतम ब्राह्मण्स डेवलप विजडम, किंग्स कॉन्कर एनिमीज, वैश्यास गेन वेल्थ एंड शूद्रास बिकम प्रॉस्पेरस. कि भागवतम के बल पे विजडम को क्या बोलेंगे हिंदी में, बुद्धिमता, कि श्रीमद भागवतम के बल पर ब्राह्मणों को बुद्धि मिलती है, जो राजा लोग हैं वे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, जो वैश्य लोग हैं उनको धन प्राप्त होता है, और जो शूद्र हैं उनका भी गुणगान होता है. और बताया गया है वुमेन्स एंड अदर ऑब्टेन एवरीथिंग द डिजायर, स्त्रियां और जो भी क्यों नहीं सुन रहे इसे, दे ऑब्टेन, उन्हें मिलता है एवरीथिंग द डिजायर, जो भी वो इच्छा करते हैं. दस व्हाट फॉर्चुनेट पर्सन हु फेल टू रेगुलरली हियर श्रीमद भागवतम. तो बताया गया कि ऐसा कौन सा दुर्भाग्य, मतलब जिसका भाग्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे श्रीमद भागवतम को नहीं सुनेगा. एज द परफेक्शन ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स वन मे ऑब्टेन श्रीमद भागवतम इन इट्स रिवल्यूशन ऑफ डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड इज बॉर्न. तो बहुत बताया गया कि बहुत बहुत जन्मों के परफेक्शन, परफेक्शन मतलब बहुत बहुत जन्मों तक सिद्धि प्राप्त करने के बाद, पुण्य कर्म करने के बाद, किसी व्यक्ति को क्या मौका मिलता है कि वो भागवतम को सुन सके. तो आप सभी भक्त लोग बहुत महान है जो यहां पर बैठे हैं, क्योंकि हम सब भागवतम को सुन पा रहे हैं, भागवतम के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना, देखिए हालांकि श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद मेरी में क्या सुकृति है जो यहां पर मैं आया हूं कृष्ण भावनावृत में, प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे में कोई सुकृति नहीं है, ये सुकृति मैंने तुम्हें दी है. तो इसी प्रकार भक्तों को यही भावना रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के, कभी कभी हमें इस पर गर्व हो जाता है, इस पर भी अहंकार आता है हमें कि मेरे ही बहुत अच्छे कर्म थे जो मैं भागवतम सुन पा रहा हूं. तो अगर इस अहंकार से हम लोग भागवतम सुनते हैं तो वो भागवतम अंदर नहीं जाती हमारे, वो ऊपर ऊपर से निकल जाती है. तो हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर हम भागवतम सुन पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, तो इसमें किसका क्रेडिट है, इसमें श्रील प्रभुपाद का क्रेडिट है. बताया गया हमें भागवतम और ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए एक शुद्ध भक्त के माध्यम से, एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के माध्यम से. इसलिए हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद पर्पस के साथ. श्रील प्रभुपाद पर्पस का मतलब है कि हम प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग कर रहे हैं और हम भागवतम को समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के अक्षरों में, अपने अक्षरों में नहीं. और जो भी वक्ता क्यों नहीं है, अगर वो प्रभुपाद जी के अक्षरों से अलग को समझाने का प्रयास करता है, इसका मतलब वो चीटर है, धोखेबाज है. कोई व्यक्ति कह सकता है कि एक लाइन ही तो गलत बोली थी, नहीं, वो धोखेबाज है. क्योंकि हमें भागवतम सुननी है एक आचार्य के माध्यम से, अपने तरीके से नहीं. अपने तरीके से तो हम बहुत काम करते आए हैं बहुत जन्मों तक, और हमने क्या किया है आज तक. प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे थे एक लेक्चर में कि कुछ लोग कुछ नया करना चाहते हैं, भागवतम की चर्चा करते हुए कुछ नया करना चाहते हैं, तो नई चीज वो ये करते हैं कि जो भी पुरानी चीज की होती है वो सब सत्यानाश कर देते हैं. केवल एक ही नई चीज वो करते हैं बस, कि जो भी आज तक आचार्यों ने किया वो सब खराब कर देते हैं. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नया नहीं करना, जो भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, केवल उसे दोहराना है बस. देखिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, स्वयं भगवान थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला. जो भी चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी शास्त्रों के बेसिस पे दी, खुद भी बोल सकते थे अपनी तरफ से, भगवान थे वो तो, कृष्ण ने भी गीता को उपदेश दिया था, परंतु नहीं, चैतन्य महाप्रभु आचार्य के रूप में आए थे और आचार्य के रूप में उन्होंने आचरण करके दिखाया कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो भी शास्त्रों में दिया गया है केवल उसे दोहराना है हमें, एक तोते के समान. तो तो जिस तरीके से हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान के जो जन्म हैं ये दिव्य हैं और ये एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है भगवान के जन्म, और हमारे अंदर ये कमी तब आती है जब हम भगवान को ऑर्डिनरी से समझ लगाते हैं, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं कंट्रोलर हूं या मैं भोगता हूं, जब हमारे अंदर की भोगने का भाव आ जाता है, ईश्वर हो अहम अहम भोगी, कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, सो हम, और मैं ही हर चीज का क्या हूं, भोगता हूं, तो हम भोगता नहीं है, हम क्या है, हम एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे भगवान भोग सके। परंतु जब ये भोगता की भावना हमारे अंदर आ जाती है और जब इस भोगता की भावना से हम लोग श्रवण करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो हम जो भी क्या क्यों बोल जो भी बोलते हैं हम, वो क्या है, मिश्रित होता है हमारी मेंटल कंकॉक्शन से। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना, इसलिए हमें डायरेक्ट शरण लेनी है श्रीमद् भागवतम की, और अपने जीवन को चलाना है श्रीमद् भागवतम के आधार पर, जिस जिस तरीके से भागवतम में कहा गई है चीजें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमारी अज्ञानता को काटती है। देखिए निश्चित रूप से, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, कभी कभी मैं एक भक्त से मिला था, वो भक्त बहुत नाराज थे, गुस्से में थे, मैंने भक्त को बोला भाई आप क्यों गुस्से में हो वहां पर, वो कहते हैं प्रभु जी जब भी मैं मंदिर आता हूँ वो प्रभु जी टोका टाकी करते हैं, जब भी मैं कुछ शास्त्र सुनने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर ऐसी चीजें बताई गई है, ये करो वो करो ये करो वो करो, मेरे को इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा अच्छा आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, वो कहते हैं हाँ लगाते हैं, तो मैंने कहा दर्द होती है, मैंने कहा होती है, मैंने कहा आप क्या करते हो, गुस्से में आके ईंट डॉक्टर के सर पे मारते हो वो कहते हैं नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं मारते भाई, वो तो आपको दुख दे रहा है, इतना आपको गुस्सा अगर आ रहा है तो आपको मारना चाहिए उसको, वो कह रहे इससे मेरा बेनिफिट होगा हमारा भला होगा। तो मैंने उसे ये समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से हम लोग भागवतम सुनते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, और मान लीजिए इसमें कुछ कड़वी बातें कही भी गई हैं जो हमें कड़वी लग रही हैं, कड़वी नहीं है, दरअसल जो सतोगुण का श्लोक होता है वो शुरू शुरू में कड़वा लगता है बाद में मीठा होता है, परंतु हम जो स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं वो वासुदेव स्थिति है, तीनों गुणों से परे वहां पर, तो उसको पाने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचे कि सब सस्ते में सब फोकट में हो जाएगा तो ये नहीं होना पड़ेगा। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब भी हम भागवतम सुनते हैं या भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम हमारी अज्ञानता को काटती है, चाहे वो भागवतम क्यों ना हो चाहे वो भक्त भागवत क्यों ना हो, इन दोनों का एक ही काम है सिर्फ हमारी अज्ञानता को काटना। बताया गया जब तक शास्त्र शस्त्र का कार्य ना करे, शास्त्र का क्या कर्तव्य है, हमारी अज्ञानता को काटना, और शस्त्र का क्या कर्तव्य है, अज्ञान काटना। तो जब तक शास्त्र शस्त्र का कार्य ना करे, जब तक शास्त्र हमारी अज्ञानता को ना काटे, तब तक उसका फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। तो हमें शास्त्र इस प्रकार से सुनने हैं, इस तरीके से सुनने हैं कि हमारी अज्ञानता कटे, अज्ञानता हमारी कि किस प्रकार हम लोग अपने को भगवान मान बैठते हैं। तो भगवान मान बैठते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भगवान जिस जगह जन्म ले रहे हैं, जिस स्थान पर जन्म ले रहे हैं, मैं भी सेम उस स्थान पर जन्म लिया हूं, भगवान के दो हाथ हैं मेरे भी दो हाथ हैं, तो कैसे हम कंपेयर करते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने, हमने बहुत बार सुना होगा ये उदाहरण पुलिस का और प्रिजनर का, कि किस प्रकार दोनों ही लोग किसमें होते हैं, जेल में होते हैं, परंतु पुलिस वाला जो है अपनी मर्जी से बाहर जा सकता है, परंतु प्रिजनर एक कैदी नहीं जा सकता। हमारी स्थिति दरअसल यह है, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं भगवान हूं या मैं कंट्रोलर हूं मैं नियंता हूं, परंतु हमारी स्थिति यह है कि हमने कल क्या किया होता है वो हमें याद नहीं होता। अगर किससे पूछ ले जाए कि कल सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था तो हमें अपना सिर खुजलाना पड़ेगा। अगर हम रोज एक ही चीज खाते तो याद होगा, अदरवाइज हमें क्या है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सोचने की कल ब्रेकफास्ट में क्या लिया था मैंने, ये हमारी स्थिति है। पर तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं ना तो ये वाहम जातु नासम ना तो हम नेम जना दीपा ना चै वना भविष्याम सर्वे व्यमतः परम, कि तुम नहीं जानते अर्जुन परंतु तुम्हारे बहुत जन्म पहले हो चुके हैं और मेरे भी हो चुके हैं, परंतु तुम सब कुछ भूल चुके हो पर मैं नहीं भूला, क्योंकि भगवान सब कुछ याद रखते हैं, वो भूल क्योंकि वो माया में नहीं है अज्ञानता में नहीं है। श्री प्रभुपाद भगवत गीता में कह रहे हैं कि कृष्णा नेवर एजेस बियॉन्ड यूथ, कि भगवान कभी भी अपनी युवा अवस्था से किशोर अवस्था से कभी बूढ़े नहीं होते, प्रभुपाद उदाहरण देके बताते हैं कि किस प्रकार जब युद्ध के स्थान पर भगवान युद्ध लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र में, भगवान के पर पौत्र भी साथ में थे, परंतु भगवान कैसे लग रहे थे? नवीन, नव यौवनम, वहां पर बिल्कुल यूथ लग रहे थे, बिल्कुल फ्रेश। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़े बूढ़े हो गए थे तो सर में थोड़े थोड़े बाल व्हाइट हो गए थे, वही तो हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पर भगवान के साथ ये सिम्टम्स नहीं थे वहां पर। हमारे साथ तो हम लोग जवानी में ही बुढ़ापे के आनंद ले रहे होते हैं, वहां पर हर प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं जवानी में। मैं बलदेव विद्याभूषण को पढ़ रहा था एक जगह, बलदेव विद्याभूषण कह रहे थे कि अगर आप में कोई संशय है तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे थे रिकॉल हिज अपीयरेंस इन डिलीवरी रूम, कि भगवान ने किस प्रकार डिलीवरी रूम में, जिस स्थान जिस जगह भगवान ने जन्म लिया था उस जगह का अगर हम याद करें कि भगवान ने जब जन्म लिया था तो चार हाथों के साथ थे, हम में से कौन थे चार हाथों के साथ? पता भी नहीं था कहां थे, चार हाथों के साथ जन्म लिया था, और उस समय भगवान, उस समय भी भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण थे, पर हमारे में से किसी की स्थिति नहीं होती। हम जब जन्म लेते थे तो हम एक ही चीज करते थे जन्म के बाद, दो चीजें, सोना और रोना, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे, परंतु भगवान की यह स्थिति नहीं थी। इसलिए भगवान में देखिए, भगवान की सारी एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज एक्सीडेंटल चल रही होती हैं। तीन गुण जो है हमारे से धक्का मार के कार्य करवा रहे होते हैं, हम लोग नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे होते हैं चीजें हम लोग। तो अगर अगर हम शॉर्ट में देखें तो भगवान दरअसल इस धराधाम में आते हैं अपनी मर्जी से, और हम लोग जो जीव हैं, बद आत्माएं हैं, ये फेंके जाते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमरे में गया और उसकी कुंडी बाहर से लगी है तो वो क्या है? बद है। और कोई कमरे में है उसकी कुंडी अंदर से लगी है तो वो क्या है? स्वतंत्र है, जब चाहे बाहर जा सकता है। तो ये भगवान की सिचुएशन है, जब चाहे आ सकते हैं और जब चाहे जा सकते हैं, परंतु क्या ये हमारी सिचुएशन है? हमारी सिचुएशन नहीं है। तो हम लोग यहां पर कोई लीला करने के लिए अवतार नहीं लिया। तो कभी कभी जैसे हम पास टाइम सुनते हैं तो हम पास टाइम टाइम पास करने के लिए सुनते हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था, हम सोचते हैं चलो भगवान की पास टाइम सुन ले, टाइम पास हो जाएगा हमारा। पर ये पास टाइम टाइम पास के लिए नहीं होती, ये हमारे जीवन में कुछ, ये हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए होती है और ये जानने के लिए होती है कि किस प्रकार से मैं भगवान को और शरणागत कर सकूं। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, देखिए मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही लिख सकता हूँ, तो मेरे को इसमें हिंदी में बार बार ट्रांसलेट करके बोलना पड़ रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, वरुणा एव कर्णाध्वनि पथिकतम, बता रहे हैं मीन्स दैट द साउंड्स अलोन एंटर दियर ईयर बट नॉट नेसेसरली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ दोज साउंड, कि कुछ लोग सिर्फ शास्त्र सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, वो अक्षर उनके कान में जाते हैं, परंतु एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ दोज साउंड्स, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो समझ है वो उनको नहीं आती। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर भी बता रहे हैं, इफ मेरली लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ भागवतम इज सो सिग्निफिकेंट देन व्हाट टू स्पीक ऑफ नोइंग देयर मीनिंग, सच आर द ग्लोरीज ऑफ द भागवतम, इवन द अनएजुकेटेड हु कैनॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। बता रहे हैं कि श्रीमद भागवतम की इतना गुणगान है भागवतम का कि जिन लोगों को समझ नहीं भी आ रहा, अगर वो केवल सुन रहे हैं, केवल अक्षर क्यों नहीं उनके कानों में जा रहे, तो इसका क्या फल होगा? बता रहे हैं, दे बिगिन टू क्रिटिसाइज द फ्रूट्स ऑफ धर्म अर्थ एंड काम, धर्म अर्थ काम के जो फल मिलता है उन्हें, वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, उन्हें नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक भक्त है, वहां पर बताया गया मुक्तिस्त्वयि मुक्लित अंजलि सेवते समान धर्म अर्थ काम मोक्ष समया प्रतीक्षा, कि मुक्ति भक्त के द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है परंतु भक्त उसे प्रवेश नहीं देता। और बता रहे हैं धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम साथ में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं परंतु भक्त को इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं, जो भागवतम केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे अभी, वो धर्म और धर्म अर्थ काम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, उन्हें नहीं चाहिए ये चीजें। और बता रहे हैं एंड डिनाई टू एक्सेप्ट द ब्रह्मानंद ऑफ मोक्ष, और उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, उन्हें नहीं चाहिए। भक्तों को क्या चाहिए फिर? केवल भगवान की सेवा चाहिए, सर्विस चाहिए। हमारे एक आचार्य बताते हैं कि हियरिंग श्रीमद भागवतम इज ऑल्सो अ सर्विस। अगर हम भागवतम सुन रहे हैं तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में अर्चन विधि, और अर्चन विधि में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के सामने श्रीमद् भागवतम सुनना यह अर्चन का पाठ है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हम लोग अंदर पुजारी की तरह आरती नहीं कर सकते, ड्रेसिंग नहीं कर सकते, तो हम कैसे राधा राधिकारमन जी की सेवा करें। तो आप राधा राधिकारमन जी की सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने आके श्रीमद् भागवतम सुनिए। ये राधा राधिकारमन जी की डायरेक्ट पर्सनल सेवा है। इसमें और ऑल्टर की सेवा में कोई भेद नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो महारण्य उपनिषद में बताया गया है अजय मानो बहुधा विजायते, दो अनबॉर्न ही अपीयर्स इन मैनी फॉर्म, कि हालांकि भगवान अजन्मा है, भगवान के जन्म नहीं होते, फिर भी बता रहे हैं ही अपीयर्स, भगवान प्रकट होते हैं बहुत बहुत रूपों में। देखिए आपने कभी देखिए हमारे भगवान कृष्ण कितने इंटरेस्टिंग है, पर हर तरीके से देखिए भगवान जलचर के रूप में भी जन्म लेते हैं, मत्स्य कूर्म पशु के रूप में जन्म लेते हैं, नरसिंह वराह। बताया गया है कि देखिए अगर हम लोग किसी जनरल सुअर की एक्टिविटीज को देखें तो हमें घृणा होती है, पर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जब भगवान वराह रूप में आए थे तो जितने जो यहां पर ऋषिगण थे वो जो तपस्या कर रहे थे, जो भक्ति कर रहे थे, जो जप कर रहे थे, उनका सब बंद हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो गए थे भगवान के ध्यान में। भगवान वराह जो शुकर रूप में सुअर के रूप में आए थे वो इतने सुंदर लग रहे थे। हमारी भौतिक संसार में रहने के बाद डिस्क्रिप्शन इतनी खराब हो गई होती है कि जब हम सोचते हैं शुकर के बारे में तो हमें समझ नहीं आता, हम सोचते हैं कि मतलब कैसे भगवान हो सकते हैं, परंतु वो ऑर्डिनरी नहीं थे, वो दिव्य थे। उस समय भगवान के शरीर से तेज निकल रहा था वहां पर, और बताया गया कि भगवान के जितने भी भक्त वहां पर उपस्थित थे हर किसी का भगवान का स्मरण बढ़ गया था भगवान के प्रति, केवल वराह भगवान के दर्शन करने से। तो ये जो भगवान के अवतार है, ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं, ये बहुत दिव्य हैं। और खासकर जैसे यहां पर इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक बताया गया है। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का सातवां और आठवां श्लोक कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो ये भगवान क्या बता रहे हैं, अब अपने कर्म बता रहे हैं इस श्लोक के बाद। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम। भगवान किसके जन्म लेते हैं? परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्टताम, दरअसल बताया गया कि जो विनाशाय च दुष्टताम है ये भगवान का सेकेंडरी कॉज है, इसमें भगवान इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, पर मुख्य किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं? परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। दरअसल भगवान भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन करने में इतने उत्साहित नहीं होते, वो सेवा में इतने पागल होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते, परंतु भगवान पागल होते हैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं वहां पर। परित्राणाय साधुनाम, देखिए हमारे मंदिर में 10 अवतारों के पीछे फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो अगर हम शुरू से देखें मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, ये जितने भी अवतार हैं 10 अवतार, और इसके अलावा भी जितने अवतार भगवान के हुए हैं, इनका कारण एक ही रहा है, सिर्फ अपने भक्त की रक्षा करना। देखिए ऐसा नहीं होता कि भगवान अवतार ले रहे हैं जब बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए हैं अब उनको दर्शन देने के लिए, नहीं। अगर हम सीरियस हैं, अगर हम गंभीर हैं भक्ति में, अगर हम हर तरीके की प्रॉब्लम्स को सहने के लिए तैयार हैं भक्ति में, तो भगवान क्या है, स्पेसिफिकली अवतार लेंगे हमारे लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आप देखिए प्रहलाद महाराज के उदाहरण से, केवल एक छोटे बच्चे के लिए भगवान ने अवतार लिया। आप देखिए अगर आप किसी प्रेसिडेंट को बोले कि एक छोटा बच्चा भूख से मर रहा है, पहली बात तो वो कुछ अरेंजमेंट नहीं करेगा। मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट कर भी देता है तो क्या करेगा, अपने किसी व्यक्ति को भेज देगा, जाओ उसको खाने के लिए कुछ दे दो, उसका पालन करो। परंतु क्या कृष्ण का यह स्वभाव है? नहीं, स्वयं भगवान आए, अपनी शक्तियों से हिरण्यकश्यप को नहीं मार सकते थे क्या? भगवान के पास शक्तियों की कमी है, परंतु भगवान ने क्या किया, स्वयं आए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। और यह करके भगवान ने प्रहलाद महाराज के गुणगान को बढ़ाया है। भगवान की हर, देखिए भक्त की हर एक्टिविटी का एक कारण होता है किस तरीके से भगवान का गुणगान बढ़े, और भगवान की हर एक्टिविटी का एक कारण होता है किस प्रकार से भक्त का गुणगान बढ़े। तो ये भगवान के कर्म है और ये भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी स्थिति में कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा सिक्योर फील होना चाहिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि मेरा साथ कोई है नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देता, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी भक्ति कमजोर है। क्योंकि अगर हम मंदिर में आए तो हम देखेंगे कि हमेशा राधा राधिकारमन कृष्ण बलराम हमारे सामने हमेशा उपस्थित है, हम जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं और हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसे पूरी करते हैं। अगर आप मायापुर जाएंगे तो वहां पर सारे ड्यूटीज जो है लाइफ साइज ड्यूटीज है। आप देखिए किसी का अगर इतना बड़ा परिवार हो तो उसको और किसकी जरूरत है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के लिए प्रयास करना है, भगवान के लिए मेहनत करनी है और अपना टाइम डिवोट करना है हमें श्रीमद् भागवतम को सुनने में और भगवान की लीलाओं को समझने में। और ये मनुष्य जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है ये इसीलिए ही प्राप्त हुआ है, इसका और दूसरा कोई कारण नहीं है। देखिए ये विज्ञान के कारण, साइंस के कारण हमने अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर दिया है, क्योंकि इस विज्ञान ने क्या है एक अंधकार फैला दिया है पूरे समाज में कि भगवान कुछ होते नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट करते भी हैं तो उनमें शक्ति नहीं है, वो मिथ्या है, कितनी प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं। तो हमें क्या है, देखिए साइंस का जो मुख्य पर्पस है वो भगवान को समझना है, और हमें भी यही करना है हमें कि हम यहां पर हैं भक्ति में तो भगवान को समझने का हम लोग प्रयास करें। किसी भी चीज को करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परंतु भक्ति करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखिए जिसको बोलना है उसको फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो फिर भी थक जाता है, पर सुनने वाले को क्या मेहनत करनी है, केवल सुनना है प्रेम से। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक श्रोता को किस प्रकार सुनना चाहिए। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक बछड़ा जो होता है, गाय का बच्चा, जब वो अपनी माता को देखता है, गाय को देखता है जिसके थन दूध से भरे हुए हैं और उसके पीछे पीछे भागता है, इस प्रकार हमारे कान भागने चाहिए कृष्ण कथा के पीछे। अभी जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमारे कान भाग जाते हैं उस स्थान से, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उस स्थान की तरफ भागने चाहिए जिस तरफ कृष्ण कथा चल रही है। इससे पता लगेगा कि हम भक्ति में कितनी उन्नति कर रहे हैं, हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी रिसाइटेड श्रीमद् भागवतम इन कलयुग टू डिलीवर द लिविंग एंटिटी दैट आर बीइंग डिवॉर्ड बाय द स्नेक ऑफ डेथ नॉनथलेस एल्स प्योरिफाई द माइंड लाइक श्रीमद् भागवतम। However, Srimad Bhagavatam is only attained by saintly person through pious activities performed over many lifetimes. यहाँ पर भी वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है कि जो श्रीमद् भागवतम है हमें प्राप्त होती है बहुत बहुत जन्मों तक पुण्य कर्म करने के बाद, और यही श्रीमद् भागवतम हमें भक्तों की कृपा से प्राप्त हुई है बहुत आसानी से। हमारे पीछे भक्त भागते हैं, आप श्रीमद् भागवतम खरीदिए, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये शिल प्रभुपाद की कृपा है और शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनकी कृपा है जिनकी वजह से हो रहा है यहां पर। और बताया गया सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम हमें भी उस सर्प से बताएगी जो हमें काटने वाला है। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली थी, उनके लिए भागवतम जरूरी है, हमारी मृत्यु किसी क्षण भी आ सकती है, तो वो काल रूपी सर्प हमारे पीछे पीछे भी भाग रहा है, इसे भूलना नहीं, हमेशा याद रखना है, परंतु उसको याद रखने के बाद डरना नहीं है, हमें शरण लेनी है श्रीमद् भागवतम की। बस परीक्षित महाराज ने जो किया, हमें क्या करना है, आचार्यों के मार्ग को फॉलो करना है बस। तो परीक्षित महाराज जो श्रवण के आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया, जब उनको पता लगा उनकी मृत्यु आने वाली है उन्होंने भागवतम की शरण ली। तो हर व्यक्ति को पता है उसकी मृत्यु आने वाली है, तो हमें क्या करनी चाहिए, केवल श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए बस। तो मैं एक लास्ट स्टेटमेंट पद्म पुराण की एक जो कोट है उसके साथ मैं विराम देना चाहूंगा। यहाँ पर पद्म पुराण में बताया गया है, तम आदि देवा नाम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजा महे भगवते स्वरूपम। बताया गया है तम आदि देवा नाम करुणा निधानम, बता रहे हैं हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो क्या है, करुणा निधानम, करुणा निधानम का मतलब है समुद्र है किसके, करुणा के समुद्र हैं, ओशियन ऑफ मर्सी। हम ऐसे भगवान के शरण लेते हैं तो कहां ऐसे भगवान, बताया गया है तमाल वर्णम सुहितावतारम, जो उनका कंप्लेक्शन है, जो उनका रंग है वो कैसा है, तमाल वृक्ष के समान है। अच्छा, तमाल वृक्ष के समान है, बहुत अच्छा है। अपार संसार समुद्र से तुम भगवान, वो भगवान हमारे लिए क्या करेंगे फिर, बता रहे अपार संसार समुद्र से तुम, ये जो भौतिक संसार है का ये समुद्र है जिसे पार करना इंपॉसिबल है, अपार संसार समुद्र से तुम, ये भगवान सेतु बन जाएंगे, पुल बन जाएंगे, ब्रिज बन जाएंगे, जो उस समुद्र से हमें पार कर पाएंगे, जो हमारी मदद करवाएंगे उस समुद्र को पार करने में, और हमारी मदद करेंगे ताकि हम उनके चरणों की शरण ले सकें। तो फिर आप कहेंगे कहां है वो भगवान, बता रहे हैं भजा महे भागवत स्वरूपम, और वो जो उनका शरीर है, वो जो भगवान है, वो है भागवत स्वरूपम, स्वयं श्रीमद भागवतम। तो ये पद्म पुराण में बताया गया है यहां पर, तो हमें भी चाहिए कि हम श्रीमद भागवतम की शरण लें, नित्यम भागवत सेवा करें हम लोग जीवन का। महाराज हमेशा, गुरु महाराज है सोनलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब भी मंदिर में आते हैं वो भक्तों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं कि हम नियमित रूप से श्रीमद भागवतम को पढ़ें। हमारे एक आचार्य ने बताया था कि या तो हमारे गोद में श्रीमद भागवतम रहेगी या हमारी गोद में माया होगी, जो किसी भी रूप में हो सकती है, धन के रूप में, स्त्री के रूप में या और किसी रूप में। तो ये ऑप्शन, ये चॉइस हमारे पास है कि हम अपनी गोद में श्रीमद भागवतम को रखना चाहते हैं या माया को। तो आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप सब श्रीमद भागवतम की शरण लें, नियमित रूप से भागवतम को पढ़ें और सुने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की नैतायिक और प्रेमानंद।
हमारे